Welcome to Old Time Chatter Podcast. I'm your host, Deshna Saha. If you're listening to my podcast for the first time, I welcome you all in here. My podcast comprises of numerous unique episodes so that you will never get bored. So join me in this journey. Let's move forward into today's episode.
Hello everyone and welcome back to this episode. Today I have a very special guest of mine joining me in here. His name is Muhammad Waqar and his YouTube videos are extremely informative. I've been a part of his channel for a long time. And if you also want to do your masters in Norway, make sure to check his channel. So I welcome him in here. Hello.
Thank you, Sunanda, for welcoming me on your podcast. I'm super excited to share my experience with all the people out there.
Yes, so can you please introduce yourself in here?
Yeah, sure. My name is Muhammad Waqar. I am from Pakistan. I've done my bachelor's in electrical engineering and then I moved to Stavanger, which is in Norway, for my master's in computational engineering. And during my master's, I planned to start this channel or kyunki kafi zyada sawal mujhe aa rahe the ki hum bhi kaise aa sakte hain bahar, hame bhi information chahiye. So I thought it's a good platform ki main YouTube par videos banau aur logon ko educate karu iske bare mein. And talking about what I'm doing right now, so I am working as a full-time IT consultant and part-time on my YouTube channel.
Yes. So, can you tell us a little bit about your background? Aap Pakistan mein kahan se ho and how was life growing up in there?
Okay, so Pakistan mein, I am basically from Lahore, which is a well-known city in Pakistan. I have lived 24 years of my life there before I moved to Norway. If we talk about my experience there, it was very good. I mean, I learned a lot of things. I learned how my culture is, how we are with our society in terms of education. It was also very good, but then I wanted to have international experience and that's what my parents planned for me. So here I am in Norway.
Yes. So, out of all those international countries, why you came to Norway? Like, why was Norway only the option?
Okay. So, it's a very interesting story. Norway was actually never in my list. I never wanted to come here. Rather, I didn't even know there is a country like Norway. I was planning for my master's in Germany, which is very well known in all the students. But during my applications in Germany, one of my friend was also applying in Norway, Abu Zulkafari, as you have introduced him as well. But unluckily, I couldn't get a place in Germany while I got a place in Norway. So I had all the reasons to come to Norway: free education, quality of education, the standard of degree. So I thought to not miss the opportunity and I came here for my master's.
So, what were the shocks you first got when you went to Norway?
The shock? There were many. Okay, so the first one would be, of course, the language. I mean, I know they speak very good English. They speak almost in every aspect of life. But still, people are not very open to you if you speak only English. I mean, they will not include you in their culture. Wo aapko apne group ka part nahi banayenge. They will help you as much as they can. But still, there will be some sort of barrier that you will feel. So that was the shock number one. Second shock would be I would say it was an experience for me. It was not a shock for me getting a placement, because even though we see that there is no as such racism, I would say, or there is no as such favorism when it comes to getting the placement, but still there are many companies out there jo ke sirf prefer karti hain ki unko Norwegian employees mil jaye, jo Norwegian bolte bhi hain aur jo unke culture mein grow up hue hain aur sara unko jante hain. So that was another cultural or experience for me, I would say. other than that I didn't feel anything that I would say ke mujhe shock hua tha idhar aake ye kaise ho raha hai kyun ho raha hai. Uske baad badi achhi cheeze maine dekhne ko mili mujhe. I mean everyone was so disciplined, which in our countries is a bit rare, and everyone was very honest. Har koi aapko jitna help kar sakta hai usse bhi zyada karte hain. So these were all the very good positive shocks that I got in Norway.
Yes. So जब आप वहाँ पे first time गए थे, आपको difficulty हुई थी friendship करने में वहाँ के लोगों के साथ?
In terms of friendship with Norwegian people, वो अभी भी है. I mean, I cannot say I have any Norwegian friend. ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि शायद when I came to Stavanger, तो मुझे अपने ही country के दोस्त मिल गए थे. और instead of going out, I prefer to be friends with them. और instead of trying to be friend with Norwegians, I prefer to be friend with them. तो इसलिए भी एक था, और दूसरा फिर कोरोना हो गया तो शायद जो हमारी मीटिंग्स हो सकती थी नॉर्वेजियन लोगों के साथ वो भी नहीं हो सकी. ना तो क्लासेस अटेंड की, ना कोई ऐसा सोशल इवेंट हुआ. तो दीज वर द मल्टीपल फैक्टर्स जिनकी वजह से आई कैन से आई हैव नेवर बीन अ फ्रेंड विद एनी नॉर्वेजियन बोर्न. रादर कुछ अच्छे लोग मिले हैं, बहुत अच्छे लोग मिले हैं जिनके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है, बट दे जस्ट केम इन द लाइफ एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे मूव्ड ऑन. तो अभी भी इवन ड्यूरिंग माय वर्क प्लेस देर आर मल्टीपल पीपल जो कि नॉर्वे से ही हैं. They are very good, they are very very helping, but I cannot call them friend as of now. I mean, but they are very helping, I can say.
Oh, I see. So have you ever faced racism wahan pe?
Racism, no, not as such. I mean, there was only one thing that I felt, or shayad jo maine mention bhi kiya, in terms of job they prefer to have someone. I mean, most of the opportunities I cannot quantify exactly, but around 60-70% or maybe even more a bit, jo itni opportunities hain wo zyada tar Norwegian speaking ke liye hoti hain. Ya agar ek English speaking person apply kar raha hai with the same competence, agar Norwegian banda apply kar raha hai to they will prefer Norwegian. To ye ek bas shock tha, aur racism to nahi keh sakte, bas I think it's very understandable jab wo kisi ko hire karte hain to they tend to hire someone jo ke unke culture se already aware hai. So that was the only thing I faced.
Before moving to my questions, बहुत सारे listeners ने आपसे questions पूछे हैं, तो पहले उनके questions मैं आपसे पूछ लेती हूँ.
जरूर जरूर.
So someone asked that can we do masters in statistics and does it hold as much value as engineering?
Yes, you can do masters in statistics. There are many universities, I can say almost all the universities, all the public universities do offer masters in statistics. And comparing the scope of masters in statistics, I cannot exactly recall because mere group mein kisi ne nahi kiya masters statistics mein, but comparing it with engineering, I think iska scope hai only if you learn many other skills. I mean, you just don't focus yourself on mathematics and stuff. Programming is one of the skills that you need if you want to distinguish yourself. Then there are many softwares out there. I mean, you must be aware of that if you are planning for this masters. So agar aap wo sare seekh lete ho, and on top of that, as I mentioned, agar aap Norwegian language seekh lete ho, so then you have many benefits doing this masters.
So someone asked that my CGPA is 3.80 out of 4.0 and IELTS is 6.5, but I was studying in a low ranking university, so will it have a problem when I apply for masters in Norway?
Okay, so here is the thing. I mean, many questions that I get is usually regarding the GPA. If I have this GPA, can I get the placement? If I have this GPA, can I get a seat? So there is no hard and fast rule ki aapka kitne GPA hoga and then you will get the placement. I can say if you have more than 70%, 70% or above 70%, that is a good GPA. Aapke kafi acche chances hain. But if it is lower than that, below 70%, तो भी चांसेस हैं, बट देन इट विल बी अ बिट डिफिकल्ट टू से दैट यू विल गेट इट और नॉट. एंड रिगार्डिंग स्टडिंग फ्रॉम अ लो रैंक यूनिवर्सिटी, इट विल नॉट अफेक्ट योर एडमिशन एट ऑल, एज लॉन्ग एज आपकी यूनिवर्सिटी आपकी कंट्री में हायर एजुकेशन कमीशन से या जो भी हायर एजुकेशन का बोर्ड है उससे आपकी डिग्री अप्रूव कर देती है, तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. यू विल बी सेम एज अदर कैंडिडेट्स फ्रॉम हायर रैंक यूनिवर्सिटीज.
तो किसी ने ये पूछा था, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं, अगर आपको आया तो आप आंसर कर दीजिए.
जरूर जरूर.
फोर कंप्यूटर सब्जेक्ट्स गेट कैन वी गेट एडमिशन इन डेटा साइंस इन पब्लिक यूनिवर्सिटी.
आई थिंक पूछना चाह रहे हैं कि शायद बैचलर्स में इन्होंने फोर कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़े हैं और वो एडमिशन ले सकते हैं या नहीं. दैट्स व्हाट आई थिंक आई गॉट द आईडिया फ्रॉम द क्वेश्चन. तो चले जितना हम बताते हैं जितना हमें क्वेश्चन समझ आया है. तो एज देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट के अगर आप इस स्पेसिफिक कोर्स में एडमिशन चाहते हैं तो ये आपके एटलीस्ट बैचलर्स में कोर्सेज होने चाहिए. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ एग्जैक्टली मेंशन किए होते हैं कोर्सेज की, ये वाला लाइक इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस में भी, और इस तरह के दो चार कोर्सेज हैं उसमें इतने आपके क्रेडिट और हों और मैथमेटिक्स में इतने होंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा. तो अगर आप वो फॉलो कर रहे हैं एज लॉन्ग एज आप वो क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा. देयर विल बी नो अदर हर्डल इन दैट.
Someone asked that talk about scholarship for master which covers hostel and provides stipend.
Interesting question. ये नॉर्वे की बैड थिंग है कि यहाँ पर कोई स्कॉलरशिप नहीं है यार. मतलब आप जर्मनी जाते हो वहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है, आप कहीं भी जाते हो आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस हैं, बट नॉर्वे में देर इज नो स्कॉलरशिप जो कि आपका हॉस्टल और जो आपका लिविंग एक्सपेंसेस कवर करते हैं. तो एज यू ऑलरेडी माइट हैव मेंशन कि यहाँ पर एजुकेशन टोटली फ्री है, उसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो आपको खुद बेयर करने पड़ते हैं, बी इट योर हॉस्टल फी, बी इट योर ग्रोसरी, बी इट योर अदर ट्रैवल, तो वो आपको सारा खुद पे करना पड़ता है. हाँ लेकिन एक ऐसा सोर्स है जिससे अगर आप नॉर्वे आए तो आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, रादर यू गेट पेड टू डू योर मास्टर्स, और वो है इरास्मस मंडे स्कॉलरशिप. मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था अपने चैनल पे. जस्ट टू रेफरेंस माई चैनल नेम इज़ ऑन माई फ्रेंड्स नेम अबुजर गफारी, वहाँ पर इरास्मस मंडेस के ऊपर एक डिटेल में वीडियो है. तो उसमें होता ये है कि बस आप एक साल के लिए नॉर्वे आते हो एंड देन यू हैव टू गो टू अनदर कंट्री फॉर कम्प्लीटिंग योर मास्टर्स. उसकी रिक्वायरमेंट है टू एटलीस्ट गो टू टू कंट्रीज. तो अगर आप उसके थ्रू नॉर्वे आ जाते हो देन यू डोंट हैव टू पे एनी थिंग, रादर यू गेट पेड.
So someone asked that if way can I get a part-time job within 1 month or 2 months of me coming to Norway?
यार ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, सबसे ज़्यादा मैं यही पूछ रहा हूँ कि part-time job कि part-time job कब मिलेगी, how much we can earn और किस तरह की job expect कर सकते हैं. तो यार इसका कोई अगेन कोई हार्ड एंड फास्ट आंसर नहीं है कि मैं आपको बता दूं विद इन अ वीक और टू और इतने महीने में आपको मिल जाएगी. इट ऑल डिपेंड्स ऑन आप कितने स्ट्रगल करते हो और आप कि कितना अच्छा नेटवर्क है. यहाँ पर नेटवर्क बड़ा मैटर करता है क्योंकि इट कैन बी अ रीज़न कि अगर मैं किसी जगह पर पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ और वहाँ पर वैकेंसी आती है तो मैं अपने फ्रेंड्स को रेफर कर सकता हूँ. हो सकता है वो वैकेंसी इंटरनेट पर पब्लिश ना हो या इंटरनली हायरिंग हो जाए, तो मैं अपने फ्रेंड्स को अगर रेफर करूँगा वो अप्लाई करेगा तो उसके उस जॉब को लेने के चांसेस ज़्यादा हैं. तो इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क और आपकी नेटवर्किंग के ऊपर. तो इट कुड बी कि आपको 2 हफ्तों में मिल जाए, 1 हफ्ते में मिल जाए. मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ जिनको नॉर्वे आने से पहले ही जॉब मिल चुकी होती है. मैं कईयों को जानता हूँ जिनको 6-6 माह बाद भी नहीं मिलती, एंड द लाइव एग्जांपल इज मी. मुझे 5-6 माह लग गए थे नॉर्वे में जॉब फर्स्ट लेते हुए. तो इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन योर वर्क, आप कितना काम करते हो इसके ऊपर.
Asked all of those question. Hope jitne bhi jan ne poochte it will help you. Na to you can definitely go and check Abuzar Ghaffari channel. I'll link it down below.
Thank you.
आपने वो YouTube channel का नाम change क्यों नहीं किया? Means both combined. आपने उन्हीं का नाम जिस रखा है?
हाँ ये अच्छा सवाल है. आई मीन जब हमने चैनल स्टार्ट किया था, इफ यू वॉच द वेरी फर्स्ट और द सेकंड वीडियो, तो दैट वाज अ डिफरेंट चैनल. जब इंट्रोडक्शन देते थे तो दैट वाज वी इन नॉर्वे, आई मीन वी बोथ, इट वाज वी इन नॉर्वे. हाँ तो फिर अबूजर को आइडिया है कि नो लेट्स कीप इट वेरी पर्सनल. आई मीन द मोस्ट ऑफ द चैनल दैट वी हैव सीन बिफोर ऑल ऑफ दिस चैनल केम, आई मीन तब तक हमें आइडिया नहीं था नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे चैनल का या कुछ इस तरह के चैनल का जो कि बड़ा एक ब्रांडेड नेम रखते हैं. तो तब तक हमने अबूजर ने ज़्यादातर चैनल वो देखे थे जो कि पर्सनलाइज थे, आई मीन किसी ना किसी के नाम पर होते थे. तो ही सेड के लेट्स कीप इट वेरी पर्सनल, आइदर यू कैन कीप योर नेम और आई कैन कीप माइन. तो मैं आई डिसाइडेड के ओके इट डजंट इवन मैटर किसका नाम है एज लॉन्ग एज वी आर अपलोडिंग अ कंटेंट तो जाने देते हैं. तो फिर हमने क्योंकि बाय दैट टाइम अबूजर वीडियोस बना रहा था, आप देखें अगर पहले 8, 7, 8 वीडियोस या 10 वीडियोस तक मैं नहीं था. तो आई थॉट कि अगर क्योंकि तुम वीडियोस बना रहे हो मैं कैमरा शायद बहुत ज़्यादा था, मैंने कहा चलो आपके चैनल का नाम आपके नाम पर रख देते हैं. तो इसलिए इसका नाम अबूजर रखा. अभी हमें काफ़ी सजेशन मिलते हैं चेंज करने के लिए, बट आई थिंक वी विल कीप इट दैट वे.
Yes, it works. But like, I guess
हाँ
people get confused that I was also confused for the first time because two people and just one name, and that I thought आप कहाँ से आ गए?
ये मेरे साथ हुआ है. अभी मैं रिसेंटली दोस्त को मिला हूँ, वो मुझे बता रहा था कि मैंने देखा कि तुम मतलब वीडियोस वगैरह बना रहे हो, तो मैंने लिंक खोल के गया चैनल पर, तो चैनल वाज अबूजर गफारी, मतलब तुम्हारा नाम मोहम्मद वकार था लेकिन अंदर वीडियोस देखा तो तुम्हारी थी. मतलब समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है अंदर. तो नहीं, होपफुली मे बी हम कभी फ्यूचर में इसको रीब्रांड करेंगे तो सोचेंगे इसके ऊपर, बट फॉर नाउ आई थिंक वी विल कीप इट दैट वे.
So, like for the part-time jobs, as if like जो मैंने सुना है teaching assistantship के अलावा जो part-time job मिलती है वो होती है waitressing and cleaning and इन सब की. So for that students को क्या Norwegian सीखनी बहुत important है या फिर can we get a part-time job in waitressing and all that stuff if we don't know Norwegian?
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसका आंसर इस तरह से कर सकते हैं कि जितनी भी ऐसी जॉब्स हैं जिनमें आपको पब्लिक इंटरेक्शन होती है, कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन होती है, फॉर एग्जांपल वेटरेस या वेटर की जॉब है, जब आप जाते हो टेबल पर ऑर्डर के लिए तो आपको कस्टमर के साथ बोलना पड़ता है, तो इस तरह की ज़्यादातर जॉब्स आपको नहीं मिल सकती अनलेस यू स्पीक नॉर्वेजियन. हाँ, इस तरह की जॉब जिसमें आपको कस्टमर के साथ इंटरेक्ट ना करना पड़े, काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं कि आप हायर हो जाओ. तो इफ़ आई हैव टू नेम अ फ्यू जॉब्स उसमें आ सकती हैं, डिश वॉशर की बहुत कॉमन जॉब है, शेफ़ की जॉब भी मिल सकती है, बट फॉर डैट आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है कुकिंग वगैरह का. उसके बाद क्लीनिंग की हैं काफ़ी कॉमन जॉब है. उसके बाद फूड डिलीवरी की आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रही है, फूडोरा और वोल्ट की. उसके बाद कुछ आईटी की जॉब्स आ जाती हैं पार्ट टाइम भी, आपको इंडस्ट्री में मिल सकती हैं. तो इस तरह की जॉब्स आप कर सकते हो अदर देन टीए, जो भी जॉब्स हैं तो इसमें आपको अच्छे चांसेस होते हैं मिलने के.
What part-time job did you did?
ओके, इट्स अ लॉन्ग एक्सपीरियंस. मैंने कोई एक जॉब नहीं किया, आई हैव इफ आई हैव टू क्वांटिफाई तो मैंने टोटल अभी तक अपने 2 साल के एजुकेशनल करियर में 9 जॉब्स किए हैं टोटल. आई हैव डन 9 जॉब्स. इससे ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं एक जॉब पे ज्यादा टिक नहीं सकता. दूसरा अंदाजा ये है कि मैंने बहुत ज्यादा जगह पर ट्राई किया हुआ है जॉब्स के लिए, तो आई हैव अ बिट ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम एवरीवेयर. तो मैं फर्स्ट जॉब वाज एज अ किचन असिस्टेंट इन इन अ पार्क, कोंगे पार्क यहाँ पर है स्तवांगर में, जो मेरे दोस्त वगैरह हैं उनको पता है, स्तवांगर से थोड़ा सा साइड पर है. तो डैट वॉज माई वेरी फर्स्ट जॉब. देन माई सेकेंड जॉब वॉज इन यूनिवर्सिटी, जहाँ पर मैंने एज एन IT असिस्टेंट जॉब की थी एग्जाम्स वगैरह में, क्योंकि एग्जाम्स यहाँ पर डिजिटल होते हैं तो उनमें इनको हेल्प चाहिए होती है. तो डैट वॉज माई सेकेंड जॉब. थर्ड जॉब वॉज एज अ पिज्ज़ा गाय, मैंने पिज्ज़े भी बनाए हैं काफ़ी ज़्यादा. तो मेरा थर्ड जॉब वो था. माई फोर्थ जॉब वॉज एज अ किचन असिस्टेंट कह सकते हैं, आई वॉज डूइंग अ बिट ऑफ डिश वॉशिंग एंड देन किचन हेल्प, तो वो मिक्स आ जाता है उसमें. डैट वॉज माई फोर्थ जॉब. माई फिफ्थ जॉब, उसके बाद जो मेरी 4-5 जॉब्स हैं ना वो सारी यूनिवर्सिटी में रही हैं. तो ये जो 4 जॉब्स आपको मैंने अभी बताए हैं डैट वॉज ड्यूरिंग माई फर्स्ट ईयर. उसके बाद मुझे जी जी ओके उसके बाद मुझे समर में, आई वॉज वेरी लकी कि मुझे समर में मेरे प्रोफेसर के साथ जॉब मिली, जिसके साथ अभी मैंने थीसिस किया है वही प्रोफेसर सेम था जिसने मुझे ड्यूरिंग समर फर्स्ट जॉब ऑफर की यूनिवर्सिटी में. जैसे पहले मैंने की थी ITS एग्जाम वाली जॉब, बट वो जब एग्जाम होता था तब जॉब होती थी, जब नहीं होता था तो नहीं थी. तो मैं फर्स्ट प्रॉपर जॉब जो मुझे ऑफर हुई थी वो मेरे प्रोफेसर ने की थी, एंड वो ड्यूरिंग समर टाइम थी. अलॉन्ग विद डैट मुझे एक और प्रोफेसर ने जॉब ऑफर कर दी थी, दैट वॉज वट आई वॉन्टेड. मुझे रिकॉर्डिंग की जॉब मिली थी क्योंकि कोरोना आ गया था और एवरीथिंग वॉज ऑनलाइन, तो शी वॉन्टेड मी टू रिकॉर्ड लेक्चर्स फॉर हर. तो मुझे वो जॉब मिली थी, मैंने रिकॉर्डिंग उसको कहीं से, शायद मैंने ही कभी बताया था या कहीं से उसको आइडिया हुआ था कि मेरे पास चैनल है यूट्यूब, तो वहाँ से उसको आइडिया हुआ था कि मैं वीडियोज़ बनाता हूँ. तो उसने मुझे कॉन्टैक्ट किया था कि हम ये काम कर सकते हैं. तो ये दो जॉब्स मैं साइमल्टेनियसली कर रहा था अपने ड्यूरिंग समर्स में फर्स्ट ईयर के बाद. उसके बाद द सेम प्रोफेसर ऑफर्ड मी मोर जॉब समर के बाद जब सेमेस्टर शुरू होता है. तो मुझे TA की और फिर मुझे यूनिवर्सिटी में एक बड़ी मज़े की जॉब मिली थी. उस जॉब में था कि मुझे अपने डिपार्टमेंट को प्रमोट करना था, मेकिंग वीडियोज़ एंड इंटरव्यूइंग प्रोफेसर्स. तो वो बड़ी मज़े की जॉब थी मेरे लिए. तो ये थी मेरी टोटल जॉब्स मैंने अभी तक की हैं एज अ स्टूडेंट.
जब आपके पास जॉब नहीं थी एंड व्हेन यू स्टार्टेड गेटिंग, तब तो वो फीलिंग की कितनी अच्छी हो गई कि अब जॉब के ऊपर जॉब मिल रही है.
हाँ, आई वाज वेरी लकी. जब फर्स्ट ईयर था ना, तो मेरी जितनी भी जॉब्स थी वो एक एक मंथ वाली थी. जैसे कि आपको आइडिया हो गया, मैं काफी ज्यादा स्विच कर रहा था. तो मैं काफी थोड़ा सा होता है कि यार, आई मीन इट्स गोना एंड सून, मुझे पता है. और फिर कोरोना भी आ गया था, तो कुछ सिक्योरिटी नहीं थी जॉब्स की. तो लेकिन जब मुझे प्रोफेसर के साथ जॉब मिली थी, तब काफ़ी अच्छी फीलिंग आई थी कि अब मुझे एक के बाद दूसरी जॉब मिल रही है. या फिर मैं खुद ही इतना उनको वो कर रहा था कि मुझे नेक्स्ट जॉब चाहिए आपके साथ, एंड इफ देयर इज एनी प्रोजेक्ट आई विल बी रिलक्टेंट. तो दे वर वेरी काइंड, उन्होंने मुझे जॉब्स ऑफर करते गए जब तक एटलीस्ट मेरा मास्टर्स नहीं कम्प्लीट हुआ. मतलब मुझे याद है थीसिस में मेरे पास जॉब थी और मैं थीसिस भी कर रहा था, और मेरा थीसिस का काम इतना ज़्यादा हो गया था कि मुझे खुद कहना पड़ा कि अभी मैं जॉब नहीं कर सकता क्योंकि मेरा थीसिस काफ़ी टफ जा रहा है. तो मतलब मेरे पास एंड तक अच्छी अपॉर्चुनिटीज रही हैं प्रोफेसर्स के थ्रू.
जॉब चाहिए टू सपोर्ट द एक्सपेंस, बट वहाँ पे कोई जज ही नहीं करते, विच इज अ गुड थिंग.
No, this is very good thing. यहाँ पर जब हम भी आए थे, for us, हमारे लिए थोड़ा सा different था. I mean, how can we do this job? We are bachelors or we are educated, हमारे country में जिसे कहा जाता है. तो we cannot, we are stereotyped कि हम ये job नहीं कर सकते. तो थोड़े से हम भी थे ज़रा reluctant कि यार ना करनी पड़े, कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, white collar जिसे कहते हैं. But ultimately, when you see कि कोई जॉब नहीं है and everyone is doing these jobs, तो आई डोंट. और फिर आपका यहाँ पर इन्वायरमेंट ऐसा है कि एवरी वन इज़ पुशिंग यू कि आप ये जॉब करो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. तो आई थिंक ये ईजी हो जाता है. बट फॉर मैनी स्टूडेंट्स आई नो ये थोड़ा सा टफ होता है कि अपने घर बताना कि भाई हम ये जॉब्स कर रहे हैं. मे बी बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेशंस दे हैव कि हमारा बच्चा बाहर पढ़ने गया है तो वो कोई दूसरी जॉब ना करे, आई मीन अपने आप को अनकम्फर्टेबल ना करे, नॉट इन अनदर वे. तो ये है थोड़ा सा स्टीरियोटाइप हमारी सोसाइटी में कि अगर हम थोड़े से पढ़ जाते हैं तो हम कोई भी सर्टन टाइप ऑफ जॉब्स नहीं कर सकते. तो मेरा नहीं ख्याल ऐसा होना चाहिए, और ये अच्छी चीज़ है कि हम यहाँ पर आके सारी जॉब्स करते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि जो जब हम कहीं खाने जाते हैं तो जो लोग हमें सर्व कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो ह्यूमन, वी कैन कनेक्ट विद देम. तो ये बड़ा अच्छा मेरे लिए, एटलीस्ट फॉर मी इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. तो अब मैं जब भी कहीं खाने जाता हूँ तो मुझे पता है द पर्सन बिहाइंड ऑल ऑफ दिस कि वो किस में से गुजरा होगा, क्या सिचुएशन होगी उसकी. तो देन यू फील मोर अबाउट देम. आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड कि हर बंदा एटलीस्ट एक तो इस तरह की जॉब करे जिसमें वो ग्राउंड लेवल पे कनेक्ट हो जाए सबके साथ.
Yes, I agree to you. So how was your feeling when you received your first job offer in Norway?
A first part-time job?
No, your first actual job अभी कर रहे हो.
हाँ ओके. तो इसके ऊपर तो मैंने बहुत डिटेल में, अगर आपने देखा हुआ है तो बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है 30 मिनट्स का. आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस. आई मीन आई हैव नेवर बीन एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, बल्कि मैं कभी इतना अच्छा स्टूडेंट भी नहीं रहा हूँ. बहुत ही एवरेज टाइप का स्टूडेंट रहा हूँ. तो मैं एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा कि एक तो मुझे जॉब मिल जाएगी, क्योंकि देर आर मैनी स्टूडेंट्स आउट देयर जो बहुत ब्रिलियंट हैं, आई मीन दे आर डूइंग अमेजिंग इन देयर करियर एजुकेशनल और फ्रीलांसिंग में. तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा कि मुझे ड्यूरिंग स्टडीज जॉब मिल जाएगी, और दूसरा कि इतनी अच्छी कंपनी में मिल जाएगी. आई मीन इफ़ आई हैव टू सी कि कंपनी किस लेवल पर है, तो अभी रिसेंटली स्टेटिस्टिक्स आए हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टॉप इंजीनियरिंग कंपनीज इन नॉर्वे. तो आई कुड नॉट एक्सपेक्ट कि मुझे यहाँ पर जॉब मिलेगी, रादर मैं तो सोच भी नहीं था ना मुझे जॉब मिलेगी. आई वॉज जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट. तो जब मुझे जॉब मिली तो वो एक्सपीरियंस आई मीन आउट ऑफ दिस वर्ल्ड था. मैं मुझे समझ नहीं थी अरे हाउ शुड आई रिएक्ट, क्योंकि जिसके लिए आप इतनी स्ट्रगल कर रहे हो. और फिर आई मीन इट वॉज लाइक अ ड्रीम कंपनी फॉर एवरी वन. अगर आप किसी से भी नॉर्वे में पूछते हो कि इफ़ यू गेट अ जॉब इन इक्विनोर हाउ वुड यू रिएक्ट, तो आई थिंक उनका रिएक्शन कुछ ऐसे ही होगा, बिकॉज इट्स अ ड्रीम कंपनी फॉर एवरी वन. तो मतलब मुझे नहीं थी समझ आ रही मैं कैसे रिएक्ट करूं, और मेरे दोस्तों ने काफ़ी मुझे चेयर अप किया, मैंने घर बताया, तो दे वर सुपर एक्साइटेड कि ड्यूरिंग स्टडीज एक तो जॉब मिल गया, दूसरा इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है. तो आई वॉज अल्हम्दुलिल्लाह वेरी लकी इन दैट टर्म्स.
मैंने आपका ग्रेजुएशन डे वाला वीडियो देखी थी जब आप पाकिस्तान से आई गेस ऑस्लो लौटे थे जस्ट टू अटेंड योर ग्रेजुएशन एंड आई लव दैट वीडियो सो मच.
नहीं मैं पाकिस्तान से नहीं था यार, आई वॉज इन ओस्लो अबूजर, क्योंकि आजकल ओस्लो होता है. तो मैं ओस्लो से स्तवंगर गया था जहाँ पर मेरी यूनिवर्सिटी है.
ओह आई सी. हाँ तो आई वाज लाइक
हाँ
लिटरली आप एयरपोर्ट में उतरे तब आपने कहा एंड देन यू आर लाइक मैं ग्रेजुएशन अटेंड करने बस आया हूँ यहाँ सो आई लव दैट होल वीडियो.
थैंक यू सो मच. बस यही पर्पज़ होता है वीडियोस बताने का कि कहीं ना कहीं सारे कनेक्ट कर सकें. इवन ऑन डेली बेसिस आई गेट अ लोड ऑफ क्वेश्चंस, और बहुत अच्छा लगता है जब आई कैन हेल्प ऑल ऑफ दीज पीपल. क्योंकि हमें पता है व्हेन आई वाज एट देयर लेवल, जब मैं पाकिस्तान में था तो मेरे जहन में भी ये सारे क्वेश्चन थे कि जीपीए मैटर करता है या नहीं, जॉब मिलेगी या नहीं. तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन सीली नहीं होता, एज लॉन्ग एज यू आर आस्किंग यू आर डूइंग गुड यू आर लर्निंग एवरी डे. तो आई अप्रिशिएट ऑल द क्वेश्चन जो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछे जाते हैं, एंड आई एम हैप मोर देन हैप्पी टू हेल्प ऑल ऑफ
Yeah, like if I ever I come for my master's in Norway, मुझे मिल जाए तो I will meet you.
देम. फॉर श्योर फॉर श्योर, इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे.
Question next is that how you dealt with homesickness and loneliness for the first time जब आप नॉर्वे अराइव किए.
बहुत अच्छा सवाल है, इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं की जाती, और आई थिंक मैंने भी अभी तक चैनल पे इसके ऊपर बात नहीं की. बट आई थिंक दिस इज़ अ टॉपिक जिसके ऊपर एक अलग से घंटा पूरा पॉडकास्ट हो सकती है. तो होम सिकनेस होती है, नो वन कैन डिनाई कि आप जितने मर्जी आप आउट गोइंग हो, जितने मर्जी आप सोशल हो, जितने मर्जी आप इंट्रोवर्ट हो एक्सट्रोवर्ट हो, यू फील दिस थिंग फॉर अ सर्टन नंबर ऑफ फैक्टर्स. आई मीन मैं इफ़ यू आर आस्किंग माई एक्सपीरियंस, तो एज यू हैव नोन बाई माई चैनल नाउ कि मैं बहुत ज़्यादा दोस्तों में इन रहता हूँ और मेरी आउटिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं. तो जब मैं पाकिस्तान से नॉर्वे फर्स्ट टाइम आया था, यहाँ पर फॉर 6 मंथ्स मेरा कोई दोस्त नहीं था, नॉट इवन एनी पाकिस्तानी. हम एक दूसरे से भी नहीं थे, जो मेरे अभी चैनल पर मेरे दोस्त वगैरह नज़र आते हैं, तो हम सब एक दूसरे से फॉर 6 मंथ मिले भी नहीं थे बिफोर क्रिसमस और फर्स्ट सेमेस्टर. तो फॉर 6 मंथ काफ़ी टफ टाइम रहा, मतलब बिजी रखते थे कहीं ना कहीं खुद को, कभी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे थे, कभी मैं और अबूज़र, तो एटलीस्ट देर वॉज अ गुड थिंग कि अबूज़र था मेरे साथ, तो हम लोग आपस में कभी कहीं चले जाते थे, कभी कुछ खाना बना लिया, कभी घूमने चले गए. तो इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ, बट स्टिल थोड़ा सा फील होता है जब आप बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स से आए होते हो. तो इवन होम सिकनेस ऐसी चीज़ है जो कि आपकी कभी भी नहीं जा सकती. इवन दीज डेज जब आई एम वर्किंग फुल टाइम, आई कैन से आई एम वेरी ओपन टू दिस, आई कैन से समटाइम्स आई फील लाइक आई शुड बी बैक होम. तो या यू डू फील दैट, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स एन एक्सपीरियंस डैट यू मस्ट गो फॉर. काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, यू गेट वेरी गुड, यू यू बिकम ब्रेव. आप अपने आप को अकेले किसी भी सिचुएशन में डील करना सिखा देते हो, आप कैसे रह सकते हो. तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, बट यू हैव टू फील इट. आई मीन यू कैन नॉट से कि मैं आऊँगा और एवरी थिंग विल बी प्लान फॉर मी, मुझे दोस्त मिल जाएंगे, सेम कल्चर मिल जाएगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी, ऐसा कभी नहीं होगा. यू विल एक्सपीरियंस थिंग्स. और जैसे मैंने बताया कि नॉर्वेजियंस भी यहाँ पर रिलक्टेंट है, दे विल नॉट ऐड यू इन देयर सोशल ग्रुप, दे विल हेल्प यू बट दे आर नॉट ओपन टू मेक फ्रेंड्स. तो अनलेस यू लर्न द लैंग्वेज, हाँ अगर आपने दोस्त बनाने हैं तो आप लैंग्वेज सीख लें आते साथ ही, काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं, देन यू गेट नॉर्वेजियन फ्रेंड्स. बट होम सिकनेस इज देयर एंड वो आपके साथ रहेगी जब तक आप नॉर्वे में अकेले हैं, दैट इज अ फैक्ट.
Like for the first time, जब आप अपने उतरे अपने फ्लाइट से, तो वहाँ पे दैट पाकिस्तानी या इंडियन कम्युनिटीज फॉर स्टूडेंट्स क्या रहती है, या फिर एवरीथिंग यू हैव टू डील ऑन योर ओन?
नहीं, अब तो अच्छी चीज़ ये है कि अब हर सिटी के ग्रुप्स बन चुके हैं. मुझे इंडियन ग्रुप्स का तो ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट सिंस आई एम फ्रॉम पाकिस्तान और मैं ज़्यादा वही सर्च करता हूँ, तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हर सिटी के ग्रुप हैं. और हम कोशिश करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको जितना ज़्यादा अकोमोडेट कर सकें करें. लाइक लास्ट ईयर जब हम सीनियर बैच बन चुके थे, तो जो स्टूडेंट्स आए थे, हम मैं और मेरे दोस्त सारे जितने भी हमारे बैचमेट थे उनको रिसीव करने गए एयरपोर्ट से, उनके लिए वेलकम पार्टी रखी जिसमें हमने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाया. और उससे ये होता है कि अगर किसी को कुछ चाहिए, कोई बात करने के लिए बंदे चाहिए, कोई फील्ड की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उनको पता चल जाता है कि ये बंदा हमारी फील्ड का है तो हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं. तो अब तो ये इजी हो गया है थोड़ा सा, आई मीन इतना ज़्यादा अभी भी नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस तो ये है, आई मीन यू फील लाइक यू आर इन अ डिफरेंट प्लेस, वो तो एक चीज़ है. बट इन टर्म्स ऑफ हेल्प अब आपके लिए काफ़ी इजी हो गया हेल्प लेना. बस ये जब मैं बर्गन में आया था रिसेंटली टू वर्क ऑन माई थीसिस एंड टू स्टार्ट माई जॉब हेयर, तो मैंने फील किया था कि यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है, मतलब नो फेसबुक ग्रुप और नो ऑफिशियल ग्रुप. पीपल वर विलिंग टू हेल्प बट यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं था. तो अभी रिसेंटली हमने उसका भी एक ग्रुप बना दिया है, तो नाउ आई फील लाइक ऑलमोस्ट हर सिटी का ग्रुप है एंड यू विल गेट हेल्प व्हेयरएवर यू कम टू नॉर्वे.
सो वर यू टेकिंग एनी डिप्रेशन टैबलेट्स या फिर कुछ जो वहां पे लेते हैं विंटर्स के टाइम?
नहीं, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कैन से ऐसा कभी नहीं हुआ. यू फील होम सिकनेस बट इतना अभी तक मुझे कभी डिप्रेशन नहीं हुआ, या मैंने मेरे किसी सर्कल में इतना ज़्यादा डिप्रेशन नहीं हुआ. हुआ होगा बट इतना ज़्यादा नहीं हुआ कि वी हैव टू बी हॉस्पिटलाइज या हमें कोई सर्टन टाइप ऑफ मेडिसिन लेनी पड़े. बट हाँ, एक चीज़ है, जब हम नॉर्वे आते हैं क्योंकि यहाँ पर विंटर्स में बिल्कुल सन नहीं होता, तो उसकी एक स्पेशल मेडिसिन है जो कि हमें लेनी होती है विटामिन डी की कमी की वजह से. बट वो हम थ्रू आउट द ईयर लेते रहते हैं क्योंकि सूरज यहाँ पर ज़्यादा नहीं होता. बट डिप्रेशन की ऐसे हमने ना कभी मेडिसिन ली है और ना कभी ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि मैं यही सबको रिकमेंड करता हूँ और सजेस्ट करता हूँ कि आप जैसे ही नॉर्वे आते हैं ट्राई टू मेक फ्रेंड्स. और सबसे ईजी तरीका होता है कि आप अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ फ्रेंडशिप करें, क्योंकि फिर कोई भी बैरियर नहीं होता, यू कैन कनेक्ट ईजिली विद ईच अदर. तो फेसबुक पे जाएं, आप सर्च करें, अब तो इतने अच्छे फिल्टर्स आ गए हैं फेसबुक के, आप इजीली किसी ना किसी को ढूंढ सकते हैं. तो जो भी मिलता है आप उसको एटलीस्ट मैसेज कर दें. एंड आई एम श्योर के यहाँ पर जितने भी लोग हैं, नो मैटर इफ दे आर इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली और हूएवर दे आर, यहाँ पर सारे हेल्प करते हैं एक दूसरे की. तो ऐसा हुआ है रिसेंटली भी कि हमने फेसबुक सर्च के थ्रू कुछ लोगों ने कॉन्टैक्ट किया है, तो हमने जितना हो सकता था उनको अकोमोडेट किया है, उनको अगर अकोमोडेशन में हेल्प चाहिए वो किया है, अगर इफ़ दे आर न्यू टू द सिटी तो हम अपनी तरफ से जितना उनके लिए फर्स्ट टू थ्री सर्टेन अमाउंट ऑफ मील्स जितना हम कर सकते थे वो किए हैं. फिर हम उनको गैदरिंग्स में इंक्लूड करते हैं ताकि वो एटलीस्ट जब तक सेटल नहीं हो जाते तब तक वो अकेला फील ना करें. उसके बाद दे हैव देयर ओन चॉइस, दे वांट टू कंटिन्यू विद द ग्रुप, तो वो ठीक है. अगर वो अकेले रहना चाहते हैं दैट्स देयर ओन चॉइस, बट वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम जितना एक दूसरे को अकोमोडेट कर सके हम करते हैं, एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट.
so much
thank you so much, even I'm learning every single day. Yahan ka experience hi aisa hai ki aap har roz kuch na kuch seekhte ho.
yes, like ye to meri favorite episodes hone wali hai, like kitna sab kuch main jaan pa rahi hu.
thank you so much.
so moving to my last few questions which I have for you is the hardest struggle which you have faced in Norway till now.
Oh, a tough question. okay, I know the answer. Hardest struggle is shifting and moving to new places. Very hard, very hard. जब आई एम श्योर मैनी पीपल कैन कनेक्ट, जब हम फर्स्ट टाइम नॉर्वे आए थे तो वो एक स्ट्रगल थी, क्योंकि मैंने जैसे बताया हमारे 5-6 महीने तक इतना ज़्यादा सर्कल नहीं था बना, तो डैट वॉज अ स्ट्रगल इन इटसेल्फ। लेकिन जब दोस्त बन गए, हमने साल डेढ़ अच्छी तरह वहाँ पर गुजारा, एवरी डे वी वर गोइंग आउट, हम एक दूसरे की तरफ गैदरिंग कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, तो हम एक अपने कम्फर्ट जोन में आ चुके थे। बट सडनली जब मुझे पता चला कि मेरी जॉब बर्गन में हुई है और मुझे यहाँ पर मूव करना है, तो अब मुझे नहीं था पता कि मैं शहर में कैसे जाऊँ, हाउ कैन आई फाइंड द अकोमोडेशन, इवन दो आई वॉज इन नॉर्वे, लेकिन मैंने कभी एक्टिवली सर्च ही नहीं किया अकोमोडेशन। अब मैं एक ही जगह पर रह रहा था पिछले साल डेढ़ से, तो वो मेरे लिए एक चैलेंज था कि अपनी अकोमोडेशन फाइंड करना। अकोमोडेशन तो ढूंढ लिया, बट व्हेन आई मूव्ड फ्रॉम वन सिटी टू अदर सिटी, इतना ज़्यादा मेरे पास लगेज था। मतलब अब जब आप नॉर्वे आते हो तो आप एक या दो बैग लाते हो, बट व्हेन यू स्टे हेयर आप इतनी ज़्यादा चीज़ें ऑन टाइम इकट्ठे करते जाते हो कि आपका लगेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वो ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तो व्हेन आई हैड टू मूव टू बर्गन, वो बहुत टफ पीरियड था। आई स्टिल रिमेंबर इन फेब्रवरी मैं और अबूजर बर्गन में मूव किए थे, तो we had a lot of luggage and we had zero help in Bergen. यहाँ पर सारी स्नो फॉलिंग थी, एंड वो हमारे लिए हमें ऐसा लग रहा था कि हम दोबारा पाकिस्तान से नॉर्वे आए हैं। मतलब हम किसी को नहीं जानते सिटी में, नो वन वॉज देयर टू हेल्प अस, हमारा लगेज कैरी करने में हमारे पास एटलीस्ट 6-7-8 बैग थे और हम खुद ही उसको टो कर रहे थे, उन स्नो पड़ी हुई थी रोड्स पे, अकोमोडेशन खुद ढूंढ रहे थे। एंड इवन द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट इज व्हेन यू मूव टू अ न्यू लोकेशन, योर फर्स्ट मील कहाँ से आएगा? आई मीन एवरीथिंग इज पैक्ड, यू डोंट हैव एनीथिंग आउट, फ्रिज में कुछ नहीं है, नाउ वेयर विल यू गेट योर फर्स्ट मील फ्रॉम? तो दीज वर द फ्यू थिंग्स, जब आप न्यू जगह पर मूव करते हो तो एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। इवन नाउ दीज डेज, जब हम आए थे तो हमें स्टूडेंट जॉब मिल गया था बिकॉज वी वर स्टूडेंट्स, अभी हमें स्टूडेंट जॉब नहीं मिल सकता बिकॉज आई एम ग्रेजुएटेड और आई एम वर्किंग। तो मैंने प्राइवेट मूव करना था, वो अगेन एक स्ट्रगल थी घर ढूंढना, और इट्स अ लॉन्ग स्ट्रगल सामान सारा शिफ्ट करना। तो दिस इज आई कैन से बाय फॉर द हार्डेस्ट थिंग फॉर मी इन नॉर्वे, जब आपको रोज चेंज करना पड़ता है।
व्हाट इज द बेस्ट थिंग नॉर्वे टिल नाउ?
The best thing, to be honest, is the salary that I get. यहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी है, जिस चीज़ के लिए हम आए थे, obviously our ultimate goal was to earn a good amount, वो यहाँ पर बहुत अच्छी है। No matter आप कितने मर्जी परेशान हो, but when it's the first or the 15th of the month, और जब आपको सैलरी मिलती है उसकी एक्साइटमेंट ही और होती है। तो that I think is the best moment every month for me. उसके बाद क्या हो सकता है? उसके बाद मीटिंग गुड फ्रेंड्स, डूइंग हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग ऑन माय ओन। आई नो जब हम अपनी कंट्रीज में होते हैं हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वी कैन नॉट लीव अवर सिटी फॉर लॉन्ग टाइम, या हमें कहीं भी जाने के लिए कुछ परमिशंस चाहिए होती हैं। तो यहाँ पर आके व्हेन यू स्टे विद इन योर लिमिट्स और आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, वी कैन ट्रैवल वेयर एवर वी वांट, वी कैन विजिट होम एवर वी वांट टू, तो वो एक अच्छी चीज़ है, वो हम एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस काउंट कर सकते हैं।
और एक जो YouTube वीडियो से मैंने सीखा है, आपको आलू के पराठे बहुत अच्छे बनाने आते हैं।
ओ यार, ये मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, जब से मैंने वो वीडियो लगाया है, मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे ये कमेंट जरूर मिलता है कि हमें सिखाओ आलू के पराठे कैसे सीखे। आई मीन आई डोंट नो इफ दे जनरली वांट टू आस्क, और वो एक थोड़ा सा पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के फॉर्म में कहते हैं। तो नहीं, वो एक्चुअली ना जब मैंने सीखा था ना, मैं नॉर्वे, ऑब्वियसली पाकिस्तान या इंडिया में हमारा होता है कि काफ़ी ज़्यादा हमें अम्मी के हाथ के पराठे मिल जाते हैं, तो जब नॉर्वे आए थे तो एटलीस्ट आलू के पराठे हम बहुत मिस कर रहे थे। तो वो जब मैं दिसंबर में पाकिस्तान गया था, तो जब मैं इस दफ़ा गया, मेरा एम था कि मैं सीख के आऊँगा ये वाली चीज़, तो मैंने सीखा अपनी अम्मी से, और जब मैं आके फर्स्ट टाइम बनाया और वो बिल्कुल परफेक्ट बना, उसकी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि मैं छुपा नहीं सका वीडियो में। नहीं, जब आप आते हो तो आप जब कुकिंग शुरू करते हो, इट्स एन एक्सपीरियंस फॉर योर ओन, आप बहुत चीज़ें सीखते हो और आपको अच्छा लगता है जब आप कुछ सीखते हो।
because I was watching your video at night, so I guess I forgot the name. I guess wo Eid wali din ya fir iftari kuch thi. So main raat ko dekh rahi hu and I was seeing that aap bana rahe to mujhe bhook lag rahi thi wo video dekhkar. Itne acche tarike se banaya tha aapne.
बस ये चीजें हैं जो आप सीख जाते हो जब अकेले रहते हो. और ये छोटी छोटी खुशियां होती हैं व्हेन यू डू समथिंग ऑन योर ओन जो कि आपने कभी नहीं किया, तो आपको जेन्युइनली अच्छा फील होता है जब आप यहाँ पर आओगे और आप पहला खाना खुद बनाओगे. स्पेशली फॉर द मेल पर्सन, मतलब जो मर्द हजरात आ रहे हैं हमारी कंट्री से, क्योंकि वी नेवर कुक्ड इन आवर ओन कंट्रीज. तो जब हम यहाँ पर आते हैं हम खुद खाना बनाते हैं, तो वो एक अलग लेवल की फीलिंग होती है.
So the last question is that any advice you want to give to any students coming in there right now?
Oh, many advices. There is not a single one. The first one is, जैसे मैंने बताया कि the first thing when you come to Norway is, मतलब बाहर से आपको लगता है कि it's a beautiful bubble, यहाँ पर हर कोई enjoy कर रहा है, they are having a luxurious life, हर दूसरे दिन Europe trip पे जा रहे हैं. I mean, this is a thing in our countries कि आप Europe travel कर पा रहे हो. तो when you first come to Norway, you have to know that कि आपको थोड़ा सा मसला होगा, स्पेशली फॉर अ गुड फ्यू डेज व्हेन यू आर नॉट सीइंग योर फैमिली फॉर अ गुड फ्यू डेज. जब आपको अकेले रहना पड़ रहा है, अपना खाना शाना खुद बनाना पड़ रहा है, तो वो एक एक्सपीरियंस होता है एंड यू मस्ट बी रेडी फॉर डैट. आप अपनी कंट्री से कुछ सीख कर आओ, एटलीस्ट आप खाना कैसे बना सकते हो. इवन तो आप सीख लेते हो यहाँ पर रह के भी, इट्स बेटर कि अगर आप थोड़ा सा सीख कर आओ. सेकेंड इज़ के आते साथ ही अपने दोस्त बनाओ. जैसे मैंने बताया, यहाँ पर आते ही आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हो कि मैं घर वालों को नहीं देख पा रहा हूँ, या होता है सबको. तो आते साथ ही द ईजीएस्ट वे इज़ कि आप अपने ही लैंग्वेज के कुछ दोस्त बना लो, अपनी ही कंट्री के दोस्त बना लो. जैसे हम पाकिस्तानी हैं, हम इंडियंस एक दूसरे के साथ दोस्त बन सकते हैं और बनते हैं हम यहाँ पर बहुत अच्छे. तो दैट यू कैन डू, जो भी आपको मिलता है आप ट्राई करो कि उसके साथ एज मच एज गुड रिलेशन शेयर कर सको, कर लो. क्योंकि यू नीड समवन टू टॉक यहाँ पर. आई मीन देर इज़ सो मच गोइंग ऑन जो कि आप हर चीज़ फैमिली के साथ शेयर नहीं कर सकते कि आज मैं मूव कर रहा हूँ तो मैं परेशान हूँ, या आज मुझे जॉब नहीं मिल रही तो मैं परेशान हूँ. यू कैन नॉट पुट योर फैमिली इन ऑल ऑफ दिस सिचुएशन. तो यू नीड समवन जो कि यहाँ पर रह रहा है और जो कि इन चीज़ों से गुजर चुका है, तो वो आपको बेहतर एडवाइस कर सकते हैं. तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप यहाँ पर अपने दोस्त बना लो. उसके बाद बी ऑप्टिमिस्टिक. जॉब्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आई नो. रियलिटी का आपके पास चेक होना चाहिए कि आई एम नॉट गोना गेट द जॉब इन द फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ, बट बी ऑप्टिमिस्टिक. आई मीन जहाँ भी अप्लाई करो अपना 100% दो और स्टे पॉजिटिव के होपफुली मुझे यहाँ से गुड रिस्पॉन्स आएगा. नो मैटर इफ़ यू गेट मैनी रिजेक्शंस, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस मिली थी बिफोर आई गॉट द फर्स्ट जॉब. तो यू हैव टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक. यहाँ पर कोई आपको मोटिवेट नहीं करेगा अनलेस यू हैव ऑफ कोर्स गुड फ्रेंड्स. तो यू हैव टू बी योर ओन सोर्स ऑफ मोटिवेशन. उसके बाद व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल जॉब, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है. मतलब पार्ट टाइम जॉब में तो आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होगा कि ये नॉर्वेजियंस को प्रेफर करें, क्योंकि वो नॉर्वेजियंस इतने ज़्यादा पार्ट टाइम जॉब नहीं करते हैं. और उनको दूसरी मिल जाती हैं जो थोड़ी सी वाइट कॉलर पार्ट टाइम जॉब होती हैं. तो दिस काइंड ऑफ जॉब वी कैन गेट थोड़ा सा स्ट्रगल करके. बट व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल जॉब, उसमें बहुत ज़्यादा, नो मैटर आप किस फील्ड से हो एक्सेप्ट फॉर आईटी, आपको ये लैंग्वेज बैरियर फेस करना पड़ता है एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर डैट. तो जस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक, बी ओपन एज मच एज यू कैन. अपने सर्कल अच्छा बनाओ, अपने लाइक माइंडेड लोगों का सर्कल बनाओ. तो देर इज़ नो सच थिंग कि आप यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते, यहाँ पर सेटल नहीं हो सकते. एवरीथिंग इज़ पॉसिबल व्हेन यू हैव गुड पीपल अराउंड यू.
गुड लाइफ एडवाइस.
Thank you. By the way, I'm not good at these things, but I'm 25 still, so I don't have any experience, but whatever I have learned, I'm happy to share with all of other people.
Yes, so tell where people can follow you.
Yeah, sure. Number one is, I will say Instagram, because जितने भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, दे नो आई टेंड टू रिप्लाई देम एज फास्ट एज आई कैन. मतलब मैं जब ट्रैवल कर रहा होता हूँ जब मैं खाना बना रहा हूँ तो मेरे पास बीच में थोड़ा सा टाइम होता है, तो मैं इंस्टाग्राम खोल के यूजली रिप्लाई करना शुरू कर देता हूँ. तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, कुछ हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो बिफोर यू गो टू माई यूट्यूब चैनल, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो. माई इंस्टाग्राम इज़ hey.abuzar वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो. देन माई सेकेंड सोर्स टू फॉलो इज़ आप मुझे यूट्यूब फॉलो कर सकते हो. वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी इंफॉर्मेशन हैं, और मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर आप मुझे कुछ पूछना चाह रहे हो तो आप पहले रेलिवेंट वीडियोज़ देख लो. मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर आपको सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप पहले वो देख लें. मेरे अबुज़र गफ़ारी चैनल का नाम है, वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं. तो दीज आर द टू सोर्सेज जहाँ पर अभी मैं एक्टिव हूँ.
So for the end, I also want to thank you for giving your time and being in here. Like, I love doing this episode, and hopefully in the future, मैं आपको फिर से एक part 2 के लिए बुलाऊंगी, where we will discuss another topic, so that a lot of people can be helped by listening to this episode.
Thank you so much, Desha, for having me. It was a wonderful experience to talk about what I have learned, और लोगों को थोड़ा सा उसके बारे में बता सका मैं. Thank you for having me, and thank you for doing such amazing work for others.
Means a lot. Thank you.